राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे जय राधा वनमाली राधा वनमाली राधा वनमाली राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं दादाते स्वपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया हरे कृष्ण। तो आज के इस धारावाहिक नित्यम भागवत सेवात्मक कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चैतन्य चरितामृत का पाठ है। चैतन्य चरितामृत अध्याय दो श्लोक संख्या एक। एक अध्याय दो श्लोक संख्या एक। अध्याय का प्रारंभ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। श्री चैतन्य महाप्रभु को वंदे। मैं नमस्कार करता हूँ। बालः एक अज्ञानी बालक, अपि भी यत जिसकी अनुग्रहात दया से तरेत पार कर सके नाना विभिन्न मत प्रस्ताव ग्राह घड़ियाल व्याप्तम से भरे हुए सिद्धांत निष्कर्ष सागरम सागर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। इसके तात्पर्य को पढ़ने से ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो हम इसका प्रारंभ से ही पढ़ेंगे। अध्याय का नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इस अध्याय में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः ब्रह्म ज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है और हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप हैं। इस संबंध में पुरुष अवतारों की भी व्याख्या की गई है। महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों के आगार हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है
कि भगवान कृष्ण ही परम स्रोत हैं और असंख्य विस्तारों के उद्गम हैं। उन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित हैं, जो कि मायावादी दार्शनिकों की द्वारा सामान्यतया परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भगवान के प्रभाव तथा वैभव प्रकाशों की एवं अंशावतारों तथा शक्त्यावतारों की भी व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की चर्चा की गई है और यह बतलाया गया है कि उनकी युवावस्था के प्रारंभ में उनकी जो आयु है वही उनका शाश्वत स्वरूप है। आध्यात्मिक आकाश में अकंश असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिन्हें वैकुंठ कहते हैं और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति हैं और सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति से प्रकट होते हैं। चूंकि चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं, कोई कारण उनसे परे नहीं है। वे सनातन हैं और उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षतः भगवान कृष्ण हैं, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों के साक्ष्यों से सिद्ध होता है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी तीन प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद पुनः पढ़ते हैं। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है और जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है, जो भयावह जलचरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि और गौतम की योग पद्धतियां तथा कणाद, कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के समस्त चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान के सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए चलो हम सब श्री चेतन महाप्रभु की पूजा करें। शिला प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान हरे कृष्णा। तो ये ग्रंथ महान प्रकाश प्रदान करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करने वाला एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में आप सभी सुन भी चुके हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा ये विचरित ग्रंथ है और भगवान के निकट पार्षद मुरारी गुप्त, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि आचार्यों के द्वारा ये उनकी कड़चाओं से, दैनंदिनी से, उनकी दैनिक डायरी से संग्रहित किया गया और हमारे महान आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको श्रवण किया और यह रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रदान किया गया। कृष्णदास गोस्वामी ने इसको संग्रहित किया और संग्रहित करने के बाद में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस पर बहुत सारी अनुवाद और व्याख्याएं हुई। शिला प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया और इसकी व्याख्या की। शिला प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सानिध्य में उनकी अनुसार और उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी महाराज हमारे आचार्यों के द्वारा ये प्रदान किया गया और ये निधिध्यासन होकर के बहुत सुंदर तरीके के साथ आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद और व्याख्या की और व्याख्या करके पूरे विश्व को प्रदान किया और पूरे विश्व को प्रदान करने के बाद में विश्व इतना आलोकित हुआ कि इसकी भविष्यवाणी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कर दी थी कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए लोग इतने लालायित हो जाएंगे कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके लिए उन्हें बंगाली भी सीखनी पड़ेगी इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। यह ग्रंथ इतना सारग्राही ग्रंथ है कि अध्यात्म के पथ पर चलते हुए पथिक को पूर्ण वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए यह ग्रंथ ही एक मार्ग बनेगा और कोई मार्ग नहीं बन सकता। बहुत सारी बातें हैं जो इस प्यार में श्लोक में आई हैं और ये श्लोक इतना मार्मिक श्लोक है इसकी गहराइयों को नापना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिए पुनः इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यदनुग्रहात् तरे नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं। क्यों वंदना करते हैं कि हमें पार जाना है। कैसे जा सकोगे, कौन सी नाव में बैठेंगे आप? ज्ञान की नाव में बैठेंगे। ज्ञान का विस्तार इतना है, कौन सी दिशा वाले ज्ञान की नाव में बैठोगे? हम भटक जाएंगे। और सामान्य जीव चाहता तो है कि हे प्रभु मैं इस भाव सागर से पार करूं और अपने गंतव्य सही गंतव्य पर पहुंचूं। देखिए हमने कहा भव सागर को पार करूं और सही गंतव्य तक पहुंचूं। दो बातें यहां पर आ गई, भव सागर को पार करूं पहली बात और सही गंतव्य पर पहुंचो ये दूसरी बात है। सामान्य साधक इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए हमें क्या क्या करूं, सही मंजिल पर पहुंचने के लिए मुझे इतना ज्ञान प्राप्त करना होगा, मैं इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूंगा, कैसे पहुंच सकूंगा? इतना ज्ञान आएगा नहीं और हम मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं, तो हाय हाय अब मैं क्या करूं? उस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए तो जिनके पास ज्ञान और बुद्धि है वो ही जा सकते हैं, हम जैसा कैसे जा सकता है? इस पीड़ा को, इस दर्द को कैसे दूर किया जा सकता है? श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपी, जिसकी बुद्धि बिल्कुल बालक जैसी हो, वो बालक ही हो, वो सामान्य सोच रखने वाला हो, वो सामान्य स्थिति तक की बुद्धि रखने वाला हो, यद अनुग्रहात्, एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वह होनी चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति। क्या होनी चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति, बस। और सारा कार्य तो श्री चैतन्य महाप्रभु करेंगे, कृपा करेगी। तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागर। सिद्धांत सागर में व्याप्त नाना प्रकार के मगरमच्छ, घड़ियाल, जलजंतु, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने वाले, एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे को अपने आगोश में लेने वाले, मैं कैसे पार कर पाऊंगा? तो इसका एक ही समाधान है, चेतन महाप्रभु की यद अनुग्रहात। अब ध्यान दीजिए, शिला प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि शिला प्रभुपाद जी जहां एक शब्द लिख देते हैं ना, वहां पर शायद चमक मारता हो या ना मारता हो, मुझे एक ग्रंथ नजर आता है जहां शिला प्रभुपाद जी ने एक वाक्य लिख दिया है ना, वहां एक ग्रंथ है। अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है। अशिक्षित बालक को, बालक बत बुद्धि वाले को, सामान्य बुद्धि वाले को भी अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है। जो भयावह जलचरों के तुल्य विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है, विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है, बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि गौतम की योग पद्धतियां, कणाद कपिल दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर अज्ञान के सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन मगरमच्छों से बचकर के कृष्ण चरण की प्राप्ति करना, यह सही गंतव्य है। अब इस सही गंतव्य तक पहुंचोगे कैसे? इस सिद्धांत सागर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे और आपके पास में भगवत कृपा नहीं है, वैष्णव कृपा नहीं है, भगवान के चरणारविंद का आश्रय नहीं है, तो कोई भी मगरमच्छ आपको खा जाएगा, कोई भी खा जाएगा। अब यहां पर बहुत समझने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं खा जाएगा बोलूंगा मैं ना, उस शब्द को भी बहुत गहरा समझने का मतलब है कि अब वो तुम्हें अपने आगोश में ले लेगा और किसी को भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये गलत है। समस्त वैदिक वाङ्मय में जो कुछ प्रस्तुत है, कहा गया है, उसमें आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप ये कह दें कि यह गलत है और सामने वाला खड़ा हुआ है वो ताड़ मार करके कह रहा है कि यही सत्य है। आपके अंदर ताकत नहीं है कि उसको आप ये बोल दो कि यह गलत है और सामने वाला यह कह रहा है कि यही सत्य है। सामने वाला यही सत्य है। अब ध्यान दीजिए, वेद कैसे हैं? सत्य हैं, वेद सत्य हैं। चार वेद, कौन से वेद को आप ये बोलेंगे कि ये वेद सत्य है और ये वेद असत्य है, ये वेद ठीक नहीं है, इस ये नहीं है? चार वेद, ऋग यजुर् सामवेद अथर्ववेद, चार उपवेद। वेद का अर्थ क्या है? वेद्यम, वेद, वेद का अर्थ मतलब पूर्ण जानकारी, जानकारी। वेद्यो, जानने योग्य। वेदांत, वेद का सार। चार वेद, चार उपवेद, 17+1, 18 पुराण एक सौ आठ उपनिषद तीन स्मृतियां नौ दर्शन जिस समय छह दर्शन आस्तिक और छह तीन दर्शन नास्तिक। जो भी सिद्धांत सामने खड़ा हुआ उसका फॉलोअर है उसको मानने वाला है वो कह रहा है कि यही सत्य है और आप जब प्रस्तुत होंगे तो उस समय आपको वो चकाचौंध में डाल देगा और ये कह दे कहां भटक गए कहां चले गए। अरे ये तो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है जिनके पास बुद्धि नहीं है जिनके पास अध्ययन नहीं है जिनके पास स्टडी नहीं है जिनके पास ज्ञान नहीं है वो भक्ति को स्वीकार करते हैं। कैसे इन मगरमच्छों से निकलोगे कैसे प्राप्त करोगे जो ये कह रहा है कि यही सत्य है। सट दर्शन दर्शन दर्शयति इति सदर्शन जो दिखाता है दर्शन किसको बोलते हैं जो दिखाता है वह दर्शन है जिसके द्वारा देखा जाता है जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है। छह दर्शन आस्तिक हमने तो उनको भी स्वीकार किया है जो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते कि जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते जो तुम कह रहे हो वो नहीं मानता। तुम तो नहीं मानते मैं तो मानता हूं तुम क्या मानते हो। मैं ये मानता हूं कि तुम नहीं मानते। मैं क्या मानता हूं मैं ये मानता हूं कि तुम नहीं मानते। इतना विशाल दर्शन हमारा है विशाल दर्शन जो नहीं मानते उनको भी स्वीकार करते हैं कि ये नहीं मानते जो मानते हैं उनको भी स्वीकार करते हैं। विश्व के जो मत हैं मतांतर हैं वो छोटे छोटे गड्ढे हैं और कहते हैं यही है और दहाड़ मान करके कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। नहीं मानोगे तो मैं प्रहार करके बताऊंगा कि यही मानो। ये छोटे छोटे इनका कोई अर्थ नहीं है इनका खाली वल का प्रयोग है और हो सकता है कि स्वार्थ उसमें जुड़े हुए बहुत सारी चीजें होंगी और पूरे विश्व में दर्शन की गहराइयों में जब आप जाएंगे फिलोसॉफी की गहराई में जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे गड्ढे हैं गहराई नहीं है। और सनातन दर्शन भारतीय दर्शन इतना गहरा दर्शन है कि तुम जितने टूटते चले जाओगे मित्र तुम तो ये कह सकते हो कि अब सामर्थ्य नहीं है आगे बढ़ने की लेकिन गहराई नहीं ना पाओ गहराई नापने की सामर्थ्य आपकी नहीं होगी। सांख्य दर्शन कपिल पतंजलि योग दर्शन चित्तवृत्ति निरोधा वेदांत दर्शन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सांख्य दर्शन न्याय वैशेषिक मीमांसाएं उत्तर मीमा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं। षट दर्शनों में वेदांत उत्तर मीमांसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जहां ब्रह्म जिज्ञासा है वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कहा है कि आंख का उन्मीलन यहां हो रहा है चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि वह कौन है जिसका कारण ये समस्त है वह कौन है जिसका कारण मैं हूं यह समस्त है जिसके कारण यह सब कुछ है और जिसके कारण मैं हूं वह कौन है यह अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है और इसी जिज्ञासा को प्रथम जीव इस सृष्टि में जीव जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी के अंदर सबसे पहले यही वस्तु आई कि वह कौन है। मैं तो अपने आप को प्रस्तुत पा रहा हूं कि ये कि ये पुष्प है और उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं। जल के थपेड़े लग रहे हैं, वायु के थपेड़े आ रहे हैं, आकाश भी दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को देख रहा हूं, कमल देख रहा हूं, जल देख रहा हूं, वायु को महसूस कर रहा हूं और आकाश है। लेकिन इसके अलावा और क्या है? विचार करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देखता। और जिधर देखा उधर ही मुंह बन गया। चतुरानन, कहां से मैं आया हूं जान नहीं पाए। स्वयंभू, प्रयत्न किया, बहुत समय तक कमलनाल में प्रवेश किया, सामर्थ्यहीन हो गए, पुनश्च आए। आने के बाद में पुनश्च बैठ गए, शांत अब मैं करूं क्या। तब आकाश में से शब्द सुनाई देते, तप तप। कल्याण के पथ पर अगर बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सही पूरी समझ नहीं पाते, आप समझ में गहराई में जाना चाहिए, तप स्वीकार करना पड़ेगा। और तप का मतलब क्या होता है आज आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। वैसे इसको समझाने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश करो। तप का अर्थ होता है अपने आप को संग्रहित करके उसमें लगा देना, उसमें लगाने के लिए आए हुए कष्ट को सहन करना, उसकी प्राप्ति में आए हुए कष्ट को सहन करना, अपने आप को इकट्ठा करके खींच लेना और लगा देना। ये खींच लेना का शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करने के लिए बहुत विस्तार चाहिए। कपिल भगवान ने हमको सुंदर तरीके के साथ में 24 तत्वों का विश्लेषण दिया, 25वां तत्व आत्मा बताया। योग में चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करो। और चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए आप कैसे कर पाएंगे? भगवत गीता में आप जानिए, भगवत गीता तो पढ़ी है, लेकिन भगवत गीता को समझना बड़ा दुरूह है और बड़ा सरल है। भगवत गीता को समझना बड़ा दुरूह है। बहुत सारे कहने लगे, प्रभु जी बहुत सारी भगवत गीता पढ़ता हूं, समझ में नहीं आती है, प्रभु भगवत गीता क्या करूं क्या करूं। बहुत दुरूह है और बहुत सरल है। भगवत गीता जैसा सरल ग्रंथ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, अपने बल पर समझने का प्रयत्न करोगे तो आपको दिए ना, पढ़िए ना भगवत गीता। दिए भगवत गीता देने के बाद में दूसरा पार्ट चालू होता है कि भगवत गीता मैंने पूरी पढ़ ली है, समझ में ये नहीं आ रहा, मैंने सारा टिक लगा रखा है, अब मुझे बताइए। दूसरा पार्ट है जब आप जाएंगे सामर्थ्यवान और आगे की क्लास में जो आप हैं उनके पास जाएंगे, तब आपको समझाएंगे, तब वो जो पढ़ा हुआ वो समझ में आएगा। बारहवें अध्याय जिसको भगवत गीता का, जिसको भक्ति योग बोलते हैं, मई एव मन आधस्तम मई बुद्धिम निवेशया निवश्यश मई एव अथ ऊर्ध न संशया अथ चित्तम समाधातुम न सकनो भी मैं स्थिरम अभ्यास योगे ततो माम इच्छा तुम धनंजया अभ्यासे भी असमर्थो अति मत कर्म परमो भवा मदर्थम अप कर्माणि कुर्वन सिद्धिम अवाप्सति अथ चित्तम समाधातुम अथ चित्तम समाधातुम न सकनो भी मैं स्थिरम अभ्यास योगे ततो माम इच्छा तुम धनंजया हे धनंजय तुम अभ्यास करो। लेकिन मेरा टारगेट यहां पर किस वस्तु का है? अथ चित्तम, अथ चित्तम सारे मानवीय समाज का, सारे मानवीय शरीर का, सारे जीव जगत का अगर कोई एक्टिवेशन पॉइंट है तो उसका नाम है चित्त। क्या नाम है? भगवत गीता में आप यहां पाइए, भगवत गीता में आप दूसरे अध्याय में पाइए, भगवत गीता में जब भगवान बोले तब पाइए, 18वें अध्याय में जब आप पाइए। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत् तुम अहंकारान् न शोषसि विनश्यति। यदि अहंकार मासित्य मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, अपना चित्त मुझ में लगाओ, मत चित्ता अपना चित्त किस में लगाओ, मुझ में लगाओ। लेकिन वह चित्त लगेगा कैसे, इस चित्त की संस्था के पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है, उस लाइन को खींचोगे कैसे, और उस लाइन का पहला पॉइंट है और उसका नाम है
व्हाट,
उसका नाम है इंद्रिय विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और 24 तत्वों में ये इंक्लूड हैं, आपके 24 तत्वों में हैं, लेकिन आप नहीं, आपके बाहर हैं, दृश्य बाहर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियां कहां हैं, आंख नाक कान त्वचा, ये आपके पास हैं, इनका फ्लो उनमें जा रहा है, वो खींच करके इधर आ रहे हैं, ये खींच करके इधर जा रहा है, इनसे घर्षण से जो सुख मिलेगा उसको मन उठाएगा, अगर घर्षण से सुख सही नहीं मिला तो मन हटाएगा, घर्षण से सुख अच्छा मिलेगा तो मन उसको प्राप्त करेगा, यही जीवन का संघर्ष है। यह भी बहुत सांकेतिक बात कही जा रही है, आंख को रूप टकराया तो अच्छा लगा तो दीवाने हो गए, बुरा लगा तो हटाओ उसको, कान से शब्द टकराया अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हटाओ इसको, इसके संघर्ष में जीव है। तो जीव कैसा है, जीव बहिर्मुख है, उस बहिर्मुख जीव को अंतर्मुख करना ही तो आध्यात्मिक साधना है, अपने को समेटना ही तो आध्यात्मिक साधना है, उसी का नाम चित्त है, और चित्त को मत चित्ता जब करोगे तब तुम्हें वस्तु की प्राप्ति होगी। इस दर्शन पर और भी बहुत सारी बातें बताने का लिए मन करता है लेकिन इस समय नहीं। छठवें अध्याय में योग के विषय में कितना सुंदर वर्णन किया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आप सठ दर्शन, और वो दर्शन जो नहीं मानते हैं, तीन दर्शन चार वाक, जब तक जियो मजे से जियो, खाओ पियो मौज करो, शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, किसने देखा है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मजा करो लूटो खाओ पियो मस्त रहो, आपको भी स्वागत है, यह दर्शन है भारत का। ठीक है तुम ऐसा मानते हो तो हम तुमको मानते हैं, तुम ऐसा मानते हो लेकिन तलवार तो मत उठाओ, जबरदस्ती क्यों मनवा रहे, मैं तो तुम्हें मानता हूं कि तुम यहीं तक रहोगे, इससे आगे तुम बढ़ नहीं सकते। बौद्ध का दर्शन, जो बौद्ध के दर्शन की चार और शाखाएं, सौतादेक शून्यवाद भी बहुत सारा बौद्ध दर्शन में है, वो भी है, ठीक है आप यहां रहिए। और उसके बाद में जैन दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है, भगवान के स्वरूप को मानते नहीं है, भगवान के स्वरूप की साकार में उनकी आसक्ति भी नहीं है। और छठ दर्शन जो मानते हैं उनमें अंतिम में वेदांत, और वेदांत कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वह वस्तु है, उसकी तरफ बढ़ना, लेकिन वेदांत यहां शांत हो जाता है, वहां पर आगे बढ़ती है भक्ति, और इसी का नाम, जब यहां से भक्ति बढ़ती है उसका नाम है भागवत धर्म, उसका नाम क्या है भागवत धर्म। इसका पथिक बहुत ही दीवाना होता है, इस पथिक को बहुत मजा हुआ, पथिक इसका होता है। ध्यान दीजिए, अब वह श्याम सुंदर जो हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान जो हैं, और कृष्ण भगवान की तीन शक्तियां, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन शक्तियां, और चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वही विस्तार हैं, वही हैं, वही हैं, वही हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमने सीखा है कि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ही, कोई डाउट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति की भी तीन शक्तियां, सत चित और आनंद, चित्त की भी तीन शक्तियां, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, विस्तार में आप चाहिए। और ध्यान दीजिए, इन सारी के साथ होने के बावजूद भी ये शक्तियों का वर्णन किया गया है, कृष्ण की शक्तियों का वर्णन किया गया है, चैतन्य महाप्रभु की शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी शक्ति शक्तिवान से युक्त होता है, शक्ति कभी शक्तिवान से अलग नहीं हो सकती, शक्तिवान की भी पहचान शक्ति से है, अन्य आश्रिता, वो भगवान एक ही हैं। स्वरूप क्या है उनका? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। क्या स्वरूप है उनका? सच्चिदानंद रूपाय। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। आप जीव उनका अंश है, जीव उनका। मेरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। भटक कैसे गए हो कि हम भिन्न अंश होने के कारण एक दूसरी शक्ति भगवान की थी और उसका नाम था महतत्व। क्या था? महत ब्रह्म। क्या था? उसने मेरे ऊपर अटैक कर लिया, मैं अपनी ताकत इतनी नहीं रखता हूं कि उसके आगोश में आ गया। मैंने उसको देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं आसक्त हो गया। जीव आसक्त हुआ प्रकृति पर, प्रकृति ने इसका भोग कर लिया और प्रकृति के चंगुल में फंस गया। अब मैं क्या करूं कि जन्म जन्मांतर तक जन्म मरण ये पुनरपि जननम के चक्कर में फंसा हुआ हूं। अब मैं क्या करूं, क्या करूंगा? तुम्हारे पास अब भी शक्ति है, अब भी शक्ति। क्या शक्ति है? अगर छोड़ दो उसको, कैसे छोड़ दे? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। यद्यपि मृथा है, बेकार है, लेकिन छूटने में बहुत कठिन है। एक संत जी थे, नदी के किनारे जा रहे थे, उन्हें एक कंबल बहता हुआ नजर आया। उन्होंने बोला कि बेटा चेला भाग करके जा, कंबल पकड़ करके ला। कंबल पकड़ने के लिए गया, वो कंबल नहीं था, वो रीछ था। कौन था? और रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब वो कहता है दोनों में युद्ध हो रहा है, वो छूटना चाहता है, भागना चाहता है। संत जी बोले, अरे चेला, जब कंबल तू पकड़ के ला नहीं सकता तो कंबल को छोड़ करके आ जा। तो चेला बोला, गुरुजी अब हम क्या कर ले कि हम क्या पकड़ ले, कंबल ने हमें पकड़ लिया। तो माया नाम की कोई वस्तु है नहीं है, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण माया तुमको पकड़े बैठी है। अन्यथा माया की ताकत है जो पकड़ ले मुझे, हम इसका उपयोग करेंगे। माया का दिया हुआ दीवाना शरीर कृष्ण की सेवा में लगा करके उसको भी धन्य कर देंगे। इधर क्या हुआ? आज मेरे श्याम सुंदर जो है ना, कितने दीवाने हैं। कृष्ण ने क्या हुआ, कृष्ण कितने दीवाने, जो चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, क्यों बन करके आए गए? कृष्ण जानते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं कैसे समझ पाऊं? तो श्री जी का प्राकट्य हुआ और श्री जी प्राकट्य होकर के कृष्ण की दीवानी होकर के श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर की वो दीवानी है और श्याम सुंदर उनके दीवाने हैं। श्याम सुंदर, एक मिनट को आंखें से हटते हो, आंखों से हटते हो तो दिल तड़पता है। आंख के सामने होते हो, आंख कहती है कि मैं खुश हूं, मैं आंख से दर्शन कर रही हूं, लेकिन दिल कहता है कि क्या दर्शन कर रही हूं, मेरी छाती से तो मिले ही नहीं, छाती तड़सती है। जब श्याम सुंदर को आलिंगन करके श्री जी लगाती है अपनी छाती से, तो आंख कहती है कि तुमने तो छाती से लग गया, मैं किसको देखूं, मुझे आगे देखने का अवकाश नहीं है। तो फिर आंख तड़पती है, आंख तड़पती है, दिल तड़पता है, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि तुम दोनों तो अपना काम कर रहे हो। कान कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ सुनने को मिल नहीं रहा, शब्द श्याम सुंदर के मिलने चाहिए। दीवाने होकर के कान श्याम सुंदर के शब्दों को सुनना चाहते हैं, आंखें दर्शन करना चाहती, हृदय छाती से लगाना चाहते हैं। ये भाव प्रियाजू का है। प्रियाजू के आगे कैसे हट जाए? तो वही श्याम सुंदर ये कहते हैं कि प्रियाजू मेरे लिए इतनी दीवानी रहती है, प्रियाजू मुझको इतना चाहती है, मेरे अंदर आखिर ऐसा है क्या? और प्रियाजू का वो सुख क्या है जो मुझको देख करके, मुझसे बातें करके, मुझको छाती से लगा कर जो आस्वादन करती है? हाय, मैं सब कुछ कर सका लेकिन अपूर्ण रह गया। प्रियाजू जो रस सुख उठा रही है, आनंद उठा रही है, वो सुख और आनंद मुझको प्राप्त नहीं हो रहा। और उसी सुख को उठाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रगट हुए। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन, भाले चंदन दरस निराले, बन फूल माला ही पर डोले, भाले चंदन दरस निराले, बन फूल माला ही पर डोले, पहरन पीत पटंबर डोले, नूपुर रुन झुन चरणन में। सुंदर लाला सचिरद लाला नाचत श्री हरे कीर्तन में। अब श्याम सुंदर को देख करके प्रिया जी कहती हैं कि श्याम सुंदर तुम क्या जानोगे, क्या जानोगे मुझे। श्याम सुंदर एक बार अगर तुम राधा होते तब तुम जान पाते कि कितना विरह वेदना मेरे अंदर सताती। श्याम सुंदर आ बन माली को तुमी पर जन्म हुई हो राधा, बन माली गो तुमी पर जन्म हुई हो राधा। हे बनमाली आप राधा बन करके देखो तब तुम जानोगे कि राधा के हृदय की व्याधा क्या है, क्या राधा चाहती, कैसे तड़पती है, किस प्रकार तुम्हारे लिए है। तुम जब विलुप्त हो जाते हो तो वो क्षण मेरे लिए बहुत वियोग का होता है। इन चरणारविंदों को, इन कर्णिकाओं को जो प्राप्त कर लिया है वही तो श्याम सुंदर विराजमान है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद भागवतम पुराण ममलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परम। प्राप्तम कैसे कर पाएंगे, सिर्फ एक ही माध्यम है। अब हमें वैतरणी तो बता दो, आपने मुझे दोनों साइडें दिखा दी हैं, वैतरणी तो बताओ मैं पार कैसे करूंगा। उस वैतरणी का नाम है कृष्ण नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्मा नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे पवित्र तो पवित्र हो ही जाते हैं, जो अपवित्र हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा आंबीर कंका यवना खशादया ये नीच पापा यदि पाश्रयाश्रया शुद्धते यस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो उन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से समस्त जीवात्मा, पापी से पापी व्यक्ति है वह भी तर जाता है। और ध्यान इस बात का रखना मेरे प्यारे, हम चंगुल में फंसे हुए हैं, काल में। किसके चंगुल में फंसे हैं, काल के में। काल तुम्हें उठा पटक करते रहेंगे लेकिन काल तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, काल तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसलिए आप काल के सामने विनम्र होकर के रहो लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरणारविंद का आश्रय लो। जैसे चरणारविंद की प्रकाश तुम्हारे हृदय पर पड़ेगी काल अपने आप तुम्हें छोड़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 बोल। बहुत बहुत आप बैठ करके और फिर बात कर लेना माताजी, इस विषय पर बोलने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, हम कब समय हो चुका है ना हरी बोल। अरे